أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حضرت عبدالس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی اس کے ترجمے میں حضور اقدس کا ترجمہ یہ ہے یعنی وہی خدا ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہی ہر ایک جان کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بذات وہی خدا ہے پس جبکہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے زندہ ہے اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت ہی عارفانہ ترجمہ اور اس کی تشریح ہے جس کے متعلق میں جو بقیہ مضمون ہے اس میں وقتاً فوقتاً بات کھولتا رہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عمومی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں عالم ہے ہر چیز کا، کیوں کوئی اور وجود عالم نہیں ہے، اس کی کوئی عقلی دلائل بھی تو ہونے چاہیے۔ اور جب میں بات کھولوں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تمام عقلی دلائل اسی آیت الکرسی میں موجود تھے لیکن صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی ان لوگوں کو جو سرسری غور کرتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تو ہر مضمون کو سمجھنے کے لیے رفتار میں کمی کرنی پڑتی ہے، جتنا تیزی سے آپ گزریں گے اتنا ہی مضمون کم سمجھ آئے گا۔ اور اسی ایک حوالے سے میں آج کا خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ انگلستان کے ایک دانشور جو تنقید کرنے والے اور مختلف کتابوں کے مصنف تھے اور ان کا نام اس پہلو سے انگلستان میں مشہور ہے، جان رسکن ان کا نام تھا، اور 1819 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں وفات پائی. انہوں نے یہ ایک موقع پر لکھا، آل ٹریولنگ بیکمز ڈل ان ایگزیکٹ پروپورشن ٹو اٹس ریپیڈیٹی. ہر سفر اپنی رفتار کی براہ راست نسبت کے ساتھ ڈل ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جتنی تیز رفتار ہو اتنا ہی سفر ڈل ہو جائے گا. اب یہ کہنے کے تو ایک عام سا فقرہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت گہرے مضامین پوشیدہ ہیں. تبھی جان رسکن کے اس فقرے کو انگریزی کتابیں نمایاں طور پر پیش کرتی ہیں، اور وہ حقیقت وہی ہے کہ جتنا تیز رفتاری سے سفر کرو گے اتنا ہی کم مضمون سمجھ آئے گی، اور جتنا کم مضمون سمجھ آئے گی اتنا ڈل ہو جائے گا. بس یہ بہت دلچسپ ایک تناسب ہے جو انہوں نے محسوس کیا اور اس کو پیش کیا، اور آیت الکرسی کو سمجھنے کے تعلق میں ان کا یہ مقولہ ہمارا مددگار بن سکتا ہے. امر واقع یہ ہے کہ دنیا میں تیز رفتاری کے نتیجے میں وہاں وہاں پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے نہیں پہنچا جا سکتا، اور تیز رفتاری کے ذریعے ان سارے امور پر حاوی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے جن پر حاوی ہونے کی انسان بساط نہیں رکھتا. لیکن زمانہ تیز رفتاری کا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تیز رفتاری کے سبب انسان نے وہ سب کچھ سیکھ لیا یا وہ بہت کچھ سیکھ لیا جس کو سست رو انسان نہیں سیکھ سکتا تھا. کہنے کو یہ بڑی معقول بات ہے، لیکن عملاً آپ دیکھیں تو جان رسکن کا یہ مقولہ غور سے اس پر چسپاں کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک فرضی بات ہے علم کی وسعت کی، ورنہ حقیقت میں یہ علم وسیع نہیں ہے. وجہ کیا ہے، کیوں انسان تیز رفتاری اختیار کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ذات بہت محدود ہے اور وسعت کائنات بہت زیادہ ہے. اگر وہ ایک جگہ بیٹھا رہے گا تو اس جگہ کے راز نسبتاً زیادہ معلوم کر سکتا ہے جہاں ٹھہرا ہوا ہو، لیکن ساری کائنات ادھوری پڑی رہ جائے گی، اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ وہاں باہر کیا ہو رہا ہے. ان دو تضادات کا شکار ہے انسان. رفتار آہستہ کرے تو بات سمجھ آئے گی، لیکن بہت سی باتوں کا علم ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہیں کیا. اور تیز کرے رفتار تو بہت سی باتوں کا علم ہو سکتا ہے مگر ان کی حقیقت سے ناآشنا رہے گا. سائنس کی دنیا میں آپ کو اسی تضادات کے نتیجے میں مختلف قسم کے سائنسدان دکھائی دیتے ہیں. بعض ایسے سائنسدان ہیں جو ایک چھوٹی سی چیز کی کنوں کو پہنچنے کے لیے ایک ہی جگہ عمریں گزار دیتے ہیں، ایسے نئے سے نئے آلوں کی مدد لیتے ہیں جن سے اس کے تہ تک اتر کے اندر دیکھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جتنے بھی ایٹومک راز ہیں وہ تیز رفتاری سے حاصل نہیں ہوئے بلکہ ایک جگہ ٹھہرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئے ہیں. دنیا میں جتنے بڑے بڑے حسابی سوال حل کیے گئے ہیں، پلانک کی تھیوری کیا تھی، اس وہ کیسے ایجاد ہوئی، اس کی تصدیق میں کیا امور درپیش، کیا امور انسان کے علم میں آئے، وہ سارے ایسی سائنسوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ایک انسان اعلیٰ قسم کے آلات لے کر، جیسے بہت نئی عظیم الشان خوردبینیں جو ایٹمی خوردبینیں ہیں، ان کی مدد سے ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، اور ایسے سائنسدان ہیں جن کی عمریں گل گئیں اس میں. लेकिन राजों की तह तक उतरते चले गए, उतरते चले गए, उतरते चले गए, लेकिन एक ऐलान आम है जो उनकी सारी जिंदगी की रिसर्च का उन्वान बनाया जा सकता है, वला युहीतून बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। जिंदगी गुजारने के बाद अंदर से अंदर उतरते चले गए लेकिन अहाता न कर सके, और बाकी जमानों के लिए मजमून अधूरा छोड़ दिया। अब उनकी पैदा, उनके बाद आने वाली साइंसदानों की नई नस्लें होंगी जो जहां उन्होंने काम छोड़ा था वहां से आगे बढ़ाएंगी, और अगर आगे बढ़ने के लिए था कुछ नहीं तो बढ़ाएंगी क्या, क्योंकि जो कुछ है वो खुद तो उन्होंने पैदा नहीं किया, ना उसे ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी पैदा हुआ उसकी तहकीक में उम्रें छोड़ नस्लें गवा देंगे मगर अहाता नहीं कर सकेंगे। ये मजमून है जो आयतुल कुर्सी की जान है, ला युहीतून बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। नामुमकिन है कि किसी इल्म का अहाता कर सकें। रफ्तारें बढ़ाएंगे तो इल्म की हकीकत हाथ से जाती रहेगी, रफ्तार आहिस्ता करेंगे तो एक जगह बैठे बैठे अंदर इतनी गहराई में और मजमून नजर आने शुरू हो जाएंगे कि वो उस पर किसी मकाम पर इस गुस्तुजू को ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये हाल आपको मैं मिसाल के तौर पर रेशम के कीड़े की शक्ल में दिखाता हूँ कि रेशम का कीड़ा है, उस पर जो तहकीकात हुई हैं वो भी इतनी गहरी कि हैरान कौन है। लेकिन रेशम का कीड़ा है क्या, क्या मुसीबत पड़ी हुई है इनको उसकी तहकीक की, वो एक हशरातुल अज़्म में से एक कीड़े की किस्म है, परवाना है, लेकिन जब अंडे से निकलता है तो अपने एक चलने रेंगने वाला जानवर है जो अपने इर्द गिर्द अपने मुंह से निकाला हुआ रेशम का ताना बाना बुनता चला जाता है। अब इस बात तक पहुंचने के लिए कई साइंसदानों की नस्लें गुजरी हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मालूम किया है कि अंदर क्या करता है वो, लेकिन कैसे करता है इसका आज तक इल्म नहीं हो सका। रेशम का कीड़ा अपने इर्द गिर्द वो रेशम का तार बुनता क्यों है, सवाल तो ये है कि क्या सूझी है उसको, और बुनता है इस तरह कि बुनता चला जाता है, उसके अंदर आप कैद हो जाता है और उस कैद से रिहाई हासिल करने तक जो उसके अंदर नशो नुमा हो चुकी होती है उसमें एक ऐसी तब्दीली होती है कि गोया वो वजूद ही मुख्तलिफ हो गया है। इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी कामिल तब्दीली। उसकी ना शक्ल वो रहती है, ना सिफात वो रहती हैं, ना आदात वो रहती हैं, सब कुछ बदल जाता है। और उस बेपर के कीड़े में पर उगने लगते हैं, यानी परों का वो हिस्सा जिस, वो मादा जो जिससे पर उग सकते हैं वो मुतहरक हो जाता है। तब वो अपना ताना बाना काट कर उसमें सुराख करके उसमें से निकल जाता है और इंसान की आंखें देखती है कि परवाना है जो उड़ गया है। जो बात मैं आपकी तवज्जो में लाना चाहता हूं वो ये है कि क्यों ऐसा करता है, किसने उसको सिखाया, ये इल्म इंसान आज तक हासिल नहीं कर सका, ना कभी कर सकता। उसकी सरिश्त में ये बात कैसे दाखिल हुई और उसे रेशम का धागा बनाने का लुआब कैसे अता हुआ, ये वो चीज है जिसको इंसान कभी भी नहीं समझ सकेगा, खा रेशम के कीड़े के साथ बैठा बैठा जिंदगी बसर कर दे, नस्लें गुजर जाएंगी उसको नहीं समझ सकेगा। बुनियादी बात यह है कि उसको इंसान ने पैदा नहीं किया, क्योंकि इंसान के पैदा होने से बहुत पहले वो बन चुका था. इसलिए खुदा की हस्ती के सबूत के तौर पर जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आयतुल कुर्सी को पेश करते हैं तो महज एक फर्जी दावा नहीं है. इसके एक एक हिस्से में खुदा तआला की हस्ती के शवाहिद हैं जिनको किसी कीमत रद्द नहीं किया जा सकता. इतना पेशदार मजमून है ये. लेकिन किसने उसकी फितरत में दाखिल किया, बदियत किया, जबकि इंसान ने तो बहरहाल नहीं किया. इंसान तो पैदा नहीं हुआ था. इंसान तो अपने इर्तका के उन मनाजिल से गुजर रहा था जबकि वो हैवानात में से एक हैवान कहलाने का मुस्तहिक था, मगर उसको दूसरे हैवान पैदा करने की सलाहियत कभी भी नहीं हुई. सारे इर्तका की कहानी साइंस की जुबानी हमें यह बताती है कि इंसान जिस हैवान की मंजिल से भी गुजरा है आगे उसने दूसरे हैवान पैदा नहीं किए, कभी भी नहीं किए. जब दूसरे पैदा नहीं किए तो अपने आप को कैसे पैदा कर लिया, अपनी अगली मंजिल को कैसे पैदा कर लिया. लेकिन ये बात तो सरदस्त एक तरफ रखें, ये बहुत लंबी कहानी है. मगर रेशम के कीड़े के मुतालिक मैं अर्ज़ कर रहा था, वो तो बाहर उसने पैदा नहीं किया. जब नहीं पैदा किया तो उसकी बका का इंतज़ाम भी इसने नहीं किया. इस पहलू से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हई और क्यूम दो लफ्ज़ों पर रोशनी डाली है. जिंदगी देने वाला ये नहीं था, ये तो कतियत से साबित है. जब जिंदगी देने वाला ये नहीं था तो कौन था वो जिंदगी देने वाला? कोई भी हो, ये इंसान बहरहाल नहीं था. और वो कीड़ा खुद अपने आप को जिंदगी देने वाला नहीं था, जिसका मतलब है जिंदगी देने वाला बैरूनी वजूद है. और जिंदगी देकर उसको कायम रखना भी तो बड़ा काम था. करोड़ों साल तक इस कीड़े को पालने का इंतजाम किया गया है, इसकी परवरिश का इंतजाम किया है, इसकी खुराक मुहैया की गई है, वो सारी चीजें इसको अता की गई हैं जिनके नतीजे में इसको अपनी परवरिश और नशो नमा का जरूरी सामान मुहैया होता रहता. वो दरख्त उगाए गए जिनके पत्तों पर ये पल सकता है. अब वो दरख्त कब उगाए गए थे? इसकी पैदाइश से पहले. पैदाइश के बाद अगर उगाए जाते तो ये पैदाइश के वक्त पलता कैसे? इसलिए लाजिम है कि वो दरख्त इसकी पैदाइश से बहुत पहले उगाए गए हों. वो एक अलग इर्तकाई सिलसिला था जो जारी था पहले से, जैसे किसी मेहमान की आमद का इंतजार किया जा रहा हो, उसके लिए तैयारी की गई हो. ये कीड़ा भी अल्लाह का मेहमान था, उसकी हई और क्यूम दोनों सिफात का मेहमान था. बस उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर रखी है अल्लाह ताला ने. और इस पहलू से आप कीड़े पर गौर करें तो खुदा की हस्ती का इनकार नामुमकिन हो जाता है. कोई इंसान अदना से भी अकल रखता हो और अकल की आंखें खोल कर देखे तो वो खुदा की हस्ती का इनकार नहीं कर सकता. सिर्फ इस कीड़े पर मुनसिर नहीं, ऐसे हशरातुल अर्ज ला इंतहा है जिनकी जिंदगी के दायरों पर अभी इंसान की नजर नहीं, और जिनके जिंदगी के दायरों पर इंसान की नजर है उस पर हैरत अंगेज मालूमात जाहिर होती हैं जिनका अहाता इंसान नहीं कर सकता. फिर तो मिसाल तो मैंने एक कीड़े की दी है, मगर दर हकीकत समंदर में जाके देखें तो समंदर में डूबे हुए इतनी किस्म के कीड़े हैं. एक पूरी कायनात उसके अंदर दिखाई गर्क हुई हुई दिखाई देती है, और वो सारे अपने अपने छोटे छोटे दायरे में अपना रिज्क भी पा रहे हैं, यानी कयूम उनके साथ मौजूद है। जिसने उनको पैदा किया उसने उनकी जिंदगी और परवरिश का इंतजाम भी किया। खुदा की कयूमत साथ साथ ना चले तो वो एक लम्हा के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। अब इतने बड़े समंदर में और उसकी तह में अरबों का लफ्ज तो बिल्कुल मामूली सा लफ्ज है, अरबों खरबों को आपस में जरब दे दें तो उससे भी ज्यादा किस्म के कीड़े वहां मौजूद हैं, या हशरातुल वो हशरात जिनकी तादाद की गिनती की जाए एक एक करके तो ये हद शुमार से बात आगे निकल जाएगी। नामुमकिन होगा इंसान के लिए कि इनको किसी शुमार में ला सके। और हर एक की बका का इंतजाम है, इसको कहते हैं अल हय्युल क्यूम। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर इशारों में जो मजामीन बयान फरमा दिए हैं उनको खोलने के लिए भी तो एक इल्म का जहान चाहिए। बस मैंने रस्किन का ये हवाला जो दिया उस हवाले से ये बात कथित तौर पर साबित हो जाती है, यानी उसके जहन में ये बात आई है कि तेज़ रफ्तारी बहुत अच्छी चीज़ है मगर डल कर देती है सफ़र को। डल होती ही उस वक्त एक चीज़ डल उस वक्त होती है या एक जहन डल उस वक्त होता है जब मज़मून के समझने से आरी हो। चुनांचे बच्चे जो तेज़ रफ्तारी से किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, बड़ों का भी यही हाल है। जहाँ किताब की समझ नहीं आएगी वहाँ सो जाएंगे, इसको कहते हैं डल होना। तो रस्किन की मुराद ये थी कि तेज़ रफ्तारी करके इंसान इल्म की कुनों को नहीं पा सकता, और जब नहीं पा सकता तो डल हो जाएगा, और डल होकर उसकी तवज्जो भी कायम नहीं रह सकती। अब हमने और डल होने का एक मज़मून रोज़मर्रा के तेज़ रफ्तार सफ़रों से भी मिल सकता है, ये जेट के सफ़र के ज़रिए और आजकल की तेज़ रफ्तार सवारियों वगैरह के ज़रिए आप तेज़ी से दुनिया के चक्कर खा सकते हैं, लेकिन इतना थक जाते हैं उसमें, इसको बोरियत कहते हैं। उस सारे सफ़र के दौरान जो चंद घंटे का हो, जहाज़ वाले ऐसा ऐसा सामान आपका दिल लगाने का करते हैं, टेलीविज़न खुली रहती है, मालूमात अदलती बदलती रहती हैं, कभी अच्छे से अच्छे खाने सामने आ रहे हैं, लेकिन इंसान की थकावट दूर नहीं होती। ये तेज़ रफ्तारी का नतीजा है। क्यों बोर हो रहा है इंसान? तेज़ रफ्तारी खुद बोरियत का मंबा है, और उसको बोरियत को दूर करने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। चुनांचे जब थक कर ये मुसाफिर उतरते हैं तेज़ रफ्तार, जितना तेज़ रफ्तार जहाज़ हो उतने ही ज़्यादा थके हुए होते हैं, हालांकि बैठे हुए एक जगह पे। उससे कई गुना लंबा सफ़र आप मोटर में बैठकर करें तो आप नहीं थकेंगे, लेकिन खुद ड्राइव करें तब भी नहीं थकेंगे। मगर ये 7-8 घंटे का सफ़र मार देता है इंसान को, यहाँ तक कि कंपनियाँ ऐसे अफसर को हुक्मन मना कर देती हैं कि ज़्यादा गहरी सोच का काम तुमने नहीं करना, कुछ दिन आराम करो, जब पूरी तरह आराम हो जाएगा तो फिर गहरी सोच के काम किया करना, वरना गलती कर जाओगे। तो ये बात है कि तेज़ रफ्तारी एक जगह कुर्रे को तय करने में, ज़्यादा कुर्रे को तय करने में मदद देती है, मगर साथ ही बोरियत पैदा करती है, क्योंकि उस कुर्रे के मुतल्लिक कुछ आपको इल्म नहीं हो रहा कि वो है क्या। इसकी बजाय पैदल चल के देखें, आप हैरान होंगे इस सफर को, सफर में और उस सफर में कितना फर्क है। जब पैदल उतर के आप खुश मंजर पहाड़ों का सफर करें, तो चलते चलते जिस्म थक तो जाएगा मगर दिमाग उकताएगा नहीं। और अगर ज्यादा लुत्फ उठाना है तो बाज़ लोगों का ये तरीका है, बाज़ सयाहों का, कि किसी एक मंजर पर जाके बैठ रहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। अगर वक्त हो तो इससे ज्यादा लुत्फानंदोज इंसान तभी मनाजिर का इंसान लुत्फानंदोज नहीं हो सकता, तभी मनाजिर से इंसान लुत्फानंदोज नहीं हो सकता। जब देखते हैं, बैठ के देखते हैं, तो आप तो बैठे रहते हैं मगर मंजर गुजरता है। एक नदी के किनारे जब बैठे हों तो वहाँ पहले जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखाई देने लगती हैं। वो ज़मीन जिस पर आप बैठे हुए हैं, वो रेत जिस पर आप बैठे हुए हैं, वो पत्थर जिस पर आप बैठे हैं, उनके अंदर से चीज़ें ऐसी दिखाई देने लगती हैं जो पहले ख्याल भी नहीं गुजरा होगा। रेत उठने लगती है, उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, पत्थर के रंग, उसकी काई, और उस काई में से कुछ कीड़े निकलते हैं, कुछ उस पे आके बैठते हैं। तो आप तो बैठ जाते हैं मगर दुनिया चलने लगती है, और चलते हुए आपके सामने नए से नए मनाज़िर पेश करते चली जाती है। खुदा ताला की ज़ात इस पहलू से एक बैठे हुए नज़ारा करने वाले के मुशाबे है कि खुदा के सामने सारी कायनात फिरती है लेकिन वो नहीं हिलता, वो अपनी जगह पे कायम है। तो कायम भी ज़ात का एक ही भी माना है, लेकिन जो कायनात उसके इर्द गिर्द फिरती है वो कितनी है, आखिर कितनी कायनात है जो उसकी गिर चक्कर खा सकती है, इसका जिक्र भी आयतुल कुर्सी में मौजूद है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक तफसीर मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ इस आयतुल कुर्सी की, जो गुज़श्ता मुफस्सिरीन की तफसीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत अज़ीम शान और बहुत गहरी है, और जो सवाल मैंने उठाया है उसका जवाब उसमें मौजूद है। वसया कुर्सीयहु समावाति वल अर्ध वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। कुर्सी तख्त को भी कहते हैं और इल्म को भी कहते हैं। अरबी में कुर्सी इल्म का नाम भी है और तख्त को भी कहते हैं। बस आम तर्जमा करने वाले मुफस्सिरीन ये समझते हैं कि अल्लाह का अर्श मुराद है, उस अर्श पर खुदा बैठा हुआ है। अगर अर्श पर बैठा हुआ है तो उस अर्श को उठाया किसने हुआ है। वला यऊदुहु से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया कि अर्श उसी ने उठाया हुआ है, वरना थके क्यों, थकने का क्या मजमून है यहाँ पे। कुर्सी उसने उठाई हुई है, उस पर बैठा हुआ नहीं है। और कुर्सी को उठाना जिस पे सारी कायनात बैठी हुई है उसके लिए, उसको दूबर नहीं है, उसके लिए किसी थकावट का मुझे नहीं बनता। तो कुर्सी समावात वाला तमाम जमीन व आसमान सारी कायनात उसकी खुदा की उठाई हुई कुर्सी पर बैठी हुई है, और दिन रात उसकी हिफाजत कर रहा है, उनका बोझ उठाए हुए है लेकिन थकता नहीं। ये सिफ्त है अल्लाह ताला की जो आयतुल कुर्सी में मजकूर है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मकबूल अल्फाज यूँ, यानी खुदा की कुर्सी के अंदर तमाम जमीन और आसमान समाये हुए हैं। कुर्सी पर की बजाय कुर्सी के अंदर फरमाया है। असल में कुर्सी का माना चूंकि इल्म भी है, इसलिए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए जो कुर्सी की जिस्मानी कैफियत से दिमाग को तोड़कर उसकी इल्मी कैफियत की तरफ इंसान को मुतवज्जे करें। ये अल्लाह ताला के इल्म की कुर्सी है जिसके अंदर सारी कायनात समाई हुई है। अगर वो हर जगह मौजूद ना हो तो सारी कायनात उसके इल्म की कुर्सी में समा कैसे सकती है। वो उसके इल्म ने सारी कायनात का बोझ उठाया हुआ है, उसके इल्म से ही कायनात परवरिश पाती है और तमाम तर कायनात उसके इल्म के दायरे में महदूद है, एक जर्रा भी उससे बाहर नहीं। ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि खुदा हर जगह मौजूद हो। जब हर जगह मौजूद है तो उसको सफर की जरूरत नहीं, उसके गिर्द उसकी पैदा हुई कायनात घूम रही है और सफर करके खुदा के सामने वो मनाजिर पेश करती है जो उसने पैदा किए और उनके नतीजे में वो अपनी मखलूकात को पलता हुआ, ज़िंदगी पाता हुआ, नशो नमा पाता हुआ, बढ़ता हुआ इर्तकाई हालात में देखता है। अब यही एक मशगला, इतना अजीम मशगला है कि ये मशगला किसी को थका सकता ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे मौके पर फरमाया कि अगर हमने कोई दिल पसंदी का मशगला ढूंढना होता, दिल लगाने का, तो अपनी जाति से ढूंढते, हमें किसी और की कोई मोहताजी नहीं है। और आयतुल कुर्सी इसी मज़मून को पेश कर रही है कि खुदा की जात के अंदर इतना दिलचस्प मशगला है कि किसी को नसीब हो जाए तो उसको जरूरत ही कोई नहीं है कि और मशगलों की तलाश करता फिरे। अपनी ही जात में उसके दिल बहलाने का, अगर हम उर्दू मुहावरा इस्तेमाल करें या कोई दुनियावी जुबान का मुहावरा इस्तेमाल करें तो कहते हैं दिल बहलावा। तो अल्लाह का वैसे तो अलग दिल कोई नहीं, मगर दिल बहलावा जिसको कहते हैं वो अपनी इंसानी जुबान में हम कह सकते हैं कि खुदा के बहलाने का भी तो कोई इंतजाम होना चाहिए, वरना अजलियत और अब्दियत बोर करने के लिए बहुत काफ़ी होनी चाहिए थी। एक शख्स जिसका वजूद ख़त्म ही ना हो उसको किस मुसीबत में मुबतला हो जाएगा। लेकिन अगर उसके दिल बहलावे का मुसलसल इंतज़ाम हो तो उसके बोर होने का सवाल नहीं, बल्कि जितना लंबा चलेगा उतना ही ज़्यादा उसको उस ज़िंदगी का लुत्फ़ आएगा। तो अगरचे लुत्फ आने का मुहावरा हम खुदा के माने मुतलिक इंसानी मुहावरों की सूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर हकीकत यही है कि अल्लाह का भी एक लुत्फ है और उस लुत्फ में डूबा हुआ अजल से अब तक जारी है और सारी कायनात पर उसकी निगाह है, हर कायनात की हर चीज़ को उसने उठाया हुआ है। यानी उसका वो अगर छोड़ दे तो ख़त्म हो जाए और इस कुर्सी को उठाने में उसको कोई दिक्कत पेश नहीं आती। ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ज़मीन और आसमान दोनों की कायनात को उठाए हुए हैं। अब जहाँ तक आसमान की कायनात का ताल्लुक है उसके मुतालिक साइंसदान हमें अब बहुत सी खबरें दे रहे हैं, मगर उनको उसका अरबवां हिस्सा भी पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ तेज़ रफ्तार आलात के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए कुछ ना कुछ मालूम कर रहे हैं। मगर हुमाज कहकर ज़मीन भी उसमें दाखिल फरमा दी, ये अहले फिक्र को दावत दी है कि तुम देखो तो सही कि ज़मीन में कितनी चीज़ें हैं जिनका बोझ तुमने नहीं उठाया हुआ, सिर्फ अल्लाह ने उठाया हुआ। और थकता ही नहीं, जारी वो सारी काम है, जिंदगी बख्शना, नई से नई जिंदगी पैदा करना, फिर हर चीज का सहारा बनना, उसके लिए हमेशा बाकी रहने के इंतजाम करना, ये इतना वसी मजमून है कि इंसान की नस्लें क्यामत तक चलती चली जाएं वो इस पर हावी नहीं हो सकती। बस ला युहीतुन विषयन का उन्वान बार बार इंसान के सामने उभरता है, और ये आयत है जो इंसानी फिक्र का पीछा ही नहीं छोड़ती, मुतनब्बे करती रहती हर मोड़ पर, तलाश करो, देखो, गौर करो। वला युहीतुन विषयन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शा, मगर उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकेंगे मगर उतना ही जितना वो चाहे और जब वो चाहे। इस सिलसिले में एक और दानिश्वर का हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो एक और बहुत बड़े अजीम इंग्लिस्तान के साइंसदान के मुतल्लिक है। अंग्रेजी पोइट्री में एक नाम बहुत मशहूर है और बहुत अजमत हासिल की है उसने, उसकी छाप इतनी मुख्तलिफ है बाकी शुरा से कि पोप अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर पोप का नाम अपनी जात में एक अलग छाप का अलंबरदार है। पोप के ऊपर बहुत से अंग्रेज मुहक्किकीन ने अपनी उम्रें गलाई हैं, इसी पर ही उन्होंने बड़े बड़े मकाले लिखे और पीएचडी हासिल की। हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे हिंदुस्तान में, यहाँ बर्बेक कॉलेज में, वो भी पोप के स्पेशलिस्ट होते थे। तो पोप शायर ने एक ऐसी बात कही है एक साइंसदान के मुतल्लिक, जिसके मुतल्लिक मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब से दुनिया बनी है किसी साइंसदान को इतना अजीम खराज तहसीन पेश नहीं किया गया। आप समझेंगे मुबालगा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ बात, अब मुझे बताएं इसमें कौन सा मुबालगा है। पोप ये अलेक्जेंडर पोप 88 में पैदा हुआ और 44 में सिर्फ 56 साल की उम्र में फौत हो गया, लेकिन न्यूटन इससे बहुत पहले पैदा हुआ था और इसकी जिंदगी ही में फौत हुआ। उस वक्त इसकी उम्र 39 साल की थी। तो इसको गालिबन तवज्जो दिलाएगी, उस वक्त अपना सबसे बड़ा अजीम शायर यही था कि न्यूटन के ऊपर उसकी शान के मुताबिक कोई ऐसा शेर कहो कि उसके कतबे पर लिखा जा सके। और इस चैलेंज को इसने किस शान से पूरा किया, अकल दंग रह जाती। उसने लिखा और गालबन यही उसके कदबे पर तहरीर अब भी दर्ज होगी, मुझे इलम नहीं, मैंने देखा नहीं न्यूटन का कदबा, लेकिन लिखा उसने इस कदबे की खातिर था, एपिटाफ इंटेंडेड फॉर सर आइज़क न्यूटन। वो क्या है? नेचर एंड नेचर्स लॉज ले हिड इन नाइट, गॉड सेड Let Newton be, and all was right. कानून-ए-कुदरत और कानून-ए-कुदरत के राज रात के अंधेरे में लिपटे हुए थे, यानी लाइल्मी के अंधेरे में पड़े हुए थे। अब जैसा कि बाइबल में आता है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, उसी हवाले से इसका दिमाग इस तरफ गया है और इसने अजीम बात कह दी कि खुदा ने यह नहीं कहा रोशनी हो जा, खुदा ने फरमाया लेट न्यूटन बी, न्यूटन हो जा, और रोशनी फैल गई। इतना अजीम मकूला है, आज तक किसी साइंसदान को दुनिया के पर्दे पर ऐसा खराज तहसीन पेश नहीं किया गया होगा। और वाकयातन ये सच्चा है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े अजीम शान साइंसदान रोशनी से अंधेरों की तरफ ले जाते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं। न्यूटन वो साइंसदान है जिसने अंधेरों से खुद भी रोशनी की तरफ सफर किया और रोशनी को पा लिया। इसलिए अगर दुनिया के तमाम साइंसदानों में किसी को हकीकतन वलीउल्लाह कहा जा सकता है तो ये न्यूटन था। इसलिए न्यूटन के अपने इकरार से पहले जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, मैं न्यूटन के मुतल्लिक ये बात आपको समझा दूं कि ईसाइत की गोद में इसने परवरिश पाई, तसलीस का मजहब इसको पढ़ाया गया बचपन से, मगर जूं जूं इसने खुदा के नूर से रोशनी हासिल की तसलीस से बेजार होता चला गया और रफ्ता रफ्ता उसकी तवज्जो बाइबल की तरफ भी मुंतकिल हुई, हालांकि जबकि जानता था कि लाजमन असल में ये खुदा का कलाम है। तो बाइबल की वो तशरीहात जो ईसाई दुनिया तसलीस के हक में पेश किया करती थी, इसने उन्हीं हवालों को तसलीस के खिलाफ इस्तेमाल किया। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने जो हमें इल्म कलाम अता किया है, यूँ मालूम होता है कि उसका फैज़ गुज़श्ता में सफ़र करके, माजी में सफ़र करके न्यूटन तक भी पहुँचा है। और वही इस्तेमाल हैरत अंगेज़ तरीक पर, यहाँ तक के ईसाइत की पेश करदा तस्वीर से कुल्लियतन बेजार हो गया और उसके नतीजे में ऐलान किया कि मैं अब इस सोच के सफ़र के बाद खुदा की हस्ती का इससे बहुत ज़्यादा कायल हो चुका हूँ जितना पहले था, और हज़रत ईसा की मोहब्बत मेरे दिल में जागजी हो गई है क्योंकि वो मुवाहिद था और एक खुदा का पुजारी था। उसने कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। अब आज अंग्रेज़ बजा तौर पर न्यूटन पर फख्र करते हैं, लेकिन हकीकत में बजा तौर पर नहीं करते, क्योंकि वो न्यूटन जिस पर फख्र होना चाहिए था उस न्यूटन को तो इन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया था। अब ज़िमनन मैं न्यूटन का तारफ कराऊं, फिर इसने जो बात कही है मैं उसकी तरफ आऊंगा। न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसके उलूम व फजूल के इल्म व फजल के नतीजे में प्रोफेसरशिप की कुर्सी दी गई थी, और उसके साथ उस ज़माने में जितना भी वजीफ़ा पाउंडों की सूरत में मुकर्रर था वो इतना था कि बड़ी आसानी के साथ जिसकी ज़रूरतें कम हों उसके लिए तो और भी ज़्यादा आसानी थी, ये अपनी ज़िंदगी के मसारिफ खर्च उसी में से निकालता, किसी और काम की ज़रूरत नहीं, दिन रात ये लेबॉरेटरी में खर्च करता था। कहता था कि मुझे कभी भी ऐसा दिन नहीं जड़ा कि मैं उठकर लेबॉरेटरी में गया हूँ और उससे मेरे बच्चों की मुझसे पहले आँख खुल गई हो। और कभी मैं लेबॉरेटरी से बाहर नहीं निकला जबकि मैं लेबॉरेटरी में 12 के बजने की आवाज़ न सुनी हो। जब घंटा घर 12 बजाता था तो मैं समझता था कि अब काफ़ी हो गई है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। और इस कैफियत में इसने इल्म को ततब्बु किया था। इस बेचारे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस इल्ज़ाम के नीचे निकाल बाहर मारा कि ट्रिनिटी के कॉलेज हमारा ना ट्रिनिटी कॉलेज जो है कैम्ब्रिज का उसके तुम प्रोफेसर बने हुए हो और ट्रिनिटी के खिलाफ प्रचार कर रहे हो, तुम तो जाहिल हो बिल्कुल, तुम्हें कोई इल्म नहीं कि ट्रिनिटी के बगैर तो कायनात ही नहीं है, तुम किस कायनात की बातें हमें बता रहे हो जिसमें ट्रिनिटी नहीं है। न्यूटन ने कौड़ी की भी परवाह नहीं। उसने कहा मैंने जो नूर हासिल करना था वो अल्लाह ताला से हासिल कर लिया है और तुम्हारी ट्रिनिटी के नूर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अंधेरा है, ये जहालत है। बस ये फिक्रा पोप का, अब आप दोबारा सुने, खुदा ने कहा लेट न्यूटन बी एंड ऑल वॉज लाइट। न्यूटन के साथ नूर वाबस्ता हो गया था और इस रोशनी को हासिल करने के लिए उसने बेहद कुर्बानियां दी। प्रोफेसरशिप को उतार के फेंका, और कोई जरिया माश नहीं था, फिर गालबन ट्यूशन लेकर या किस तरह पला है, लेकिन उस 60 पाउंड था गालबन उस वक्त इसका वजीफा, वो इसने एक तरफ फेंक दिया कि अपना वजीफा अपने पास रखो, मैं खुदा को नहीं छोड़ सकता, मैं ट्रिनिटी कॉलेज को छोड़ सकता हूँ, और अपने इल्म की तहकीक फिर भी जारी रखी। ये आइज़क न्यूटन है जिसके मुतालिक मैंने अर्ज किया है कि जब से दुनिया में इल्मी इनकलाबात आए हैं, ऐसा इल्मी इनकलाब किसी साइंसदान के जरिए नहीं आया जिसमें दुनियावी उलूम की रोशनी भी फैल गई हो और रूहानी उलूम की रोशनी भी फैल गई हो। एक न्यूटन था, और न्यूटन का अपना इकरार सुन लीजिए, मैं क्या हूं। न्यूटन अपने आप को क्या समझता था, उसके अल्फाज में, आई डू नॉट नो वट आई मे अपीयर टू द वर्ल्ड। मैं अपने काम में खोया हूं, मुझे क्या पता कि दुनिया मेरे मुतलिक क्या सोचती है, क्या जानती है। लेकिन उसको अंदाजा था कि तारीफ बहुत कर रहे होंगे कि बड़ा आलिम आदमी है। कहता, आई डू नॉट नो वट आई मे अपीयर टू द वर्ल्ड बट टू माई सेल्फ आई सीम टू हैव बीन ओनली लाइक ए बॉय प्लेइंग ऑन द सी शॉर। मैं अपनी नजर में तो मैं अपने आप को एक छोटे से बच्चे के तौर पर देखता हूं जो इल्म के समंदर के साहिल पर खेल रहा हो। वो जिसने इल्म का एक नया दौर शुरू करवाया है, उसकी चूंकि उस पर खुदा भी रोशन हो चुका था, इसलिए उसकी अपनी इल्मी हैसियत उसकी नजर में सिकुड़ गई। और ला युहीतू ना बेशय मिन इल्मिही, उसको इल्म नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर यही ऐलान उसने किया है और वह बांगे दोहल यह ऐलान किया है, ला युहीतू ना बेशय मिन इल्मे इल्ला बिमा शाअ, उसके इल्म का कोई चीज इहाता नहीं कर सकती मगर जितना वो चाहे, और जिसे वो चाहे उसको उतना ही इहाता नसीब होगा। चुनाचे कहते हैं, मैं एक छोटे बच्चे की तरह समंदर के साहिल पर, यानी इस इल्म के समंदर के साहिल पर अपने आप को देख रहा हूं जो अपनी तवज्जो बटाने की खातिर, अपने दिल बहलावे के लिए कभी एक छोटा सा मुलायम पत्थर ढूंढ लेता है, उसको मैं कले पे लगाता, कहता है कि देखो कितना मुलायम पत्थर है, और कभी कोई घूंगा तलाश कर लेता है जो समंदर की तह में बना है, कैसे बना, क्यों बना, क्यों उस घूंगे के जानवर ने उसको छोड़ दिया, उसकी तफसील पर उसकी कोई नजर नहीं होती, लेकिन अपने लिए वो और अ प्रीटियर शेल देन ऑर्डिनरी, आम शेल से ज्यादा कोई खूबसूरत सा शेल उसको नजर आए तो उसे चुन लेता है। अब ये तजर्बा तो आप सबका ही होगा जिन्होंने भी साहिल समंदर पर पिकनिक मनाई है, हाँ वो कराची के हों या इंग्लिस्तान के हों। अक्सर लोग तो ऐसे हैं यहाँ जिन्होंने ज़रूर साहिल समंदर देखा होगा और पिकनिक भी मनाई होगी, वो जानते हैं कि किस तरह वो दौड़े फिरते हैं घूमों की तलाश में, खूबसूरत पत्थरों की तलाश में, छोटे हों या बड़े हों, सारे इस जिद्दोजहद में शामिल हो जाते हैं। तो न्यूटन कहता है कि मैं भी अपने आप को उस बच्चे के तौर पर देखता हूं, वाइल्स द ग्रेट ओशन ऑफ ट्रूथ ले ऑल अनडिस्कवर्ड बिफोर मी। मैं ऐसे बच्चे के तौर पर देखता हूं जो इस किस्म के घूंगों वगैरह को चुनने में मसरूफ हो, جبکہ عظیم الشان سچائی کا سمندر اس کے سامنے دور تک پھیلا پڑا اور گہرائی میں اس کی اس کا کوئی اتھاہ نظر نہ آئے. اگر وہ اپنے آپ کو عالم اور سائنسدان کہہ سکتا ہے تو کہتا پھر نیوٹن سے بھی توقع رکھ لو کہ وہ اپنے آپ کو کیا دیکھ رہا ہے. کتنی گہری کتنی حقیقی بات کی ہے. اور وہی سمندر ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اس کے اندر اتنے بے شمار خدا تعالیٰ کی سنائی کے گواہ موجود ہیں کہ واقعتاً ایک نا پیدا کنار سمندر ہے جو کبھی ساری زندگی کی جستجو میں ختم نہیں ہو سکے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اس کی علم کی کرسی آسمانوں میں محیط ہے. مگر تم یہ نہ خیال کرو کہ ہم تمہیں اونچا اڑنے کی دعوت دے رہے ہیں, تم میں طاقت کہاں ہے کہ آسمانوں کے راز معلوم کر سکو, زمین کے کر کے دیکھو. اور سطح زمین پر جو کائنات پھیلی پڑی ہے اس پر بھی غور کر کے دیکھو, اور سمندروں میں جو ڈوبی ہوئی کائنات ہے اس پر بھی غور کر کے دیکھو. بس ریشم کے جس کیڑے کی مثال میں نے آپ کو دی تھی وہ سطح سمندر پر سمندر کے اندر نہیں بلکہ زمین کے باہر ہے. اور اس تلاش میں سائنسدان نئے سے نئے علم کی شاخیں نکال رہے ہیں کہ زمین کے اوپر جنگلوں میں اور زمین کی سطح پر دھنسے ہوئے کیڑوں کی صورت میں کیا کچھ ہے جس پر ہمیں تحقیق کرنی ہے, اور جو بھی تحقیق کرتے ہیں اس کے نتیجے میں مزید سے مزید اور باتیں معلوم ہوتی چلی جاتی ہیں اور سفر ختم ہونے کی بجائے اور پھیل جاتا ہے. بس خدا تعالیٰ کی ابدیت کا یہ بھی ثبوت ہے, اس کی ازلیت کا یہ بھی ثبوت ہے کہ جو ازلی ابدی ہے اس کی تخلیق میں بھی ایک ازل اور ابدیت کا رنگ پایا جاتا ہے. جتنا بھی آپ زمین کی سطح پر بسنے والے کیڑوں مکوڑوں نہیں بلکہ اور مخلوقات پر غور کریں تو ان کی کنوں تک آپ پہنچ نہیں سکتے. آج کل جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں شیروں پر بھی تحقیق ہو رہی ہے, اور بکثرت وہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں جن کا پہلے کوئی علم نہیں تھا. مگر شیر کی سرشت میں وہ چیزیں کیوں آئی ہیں, کیسے داخل ہوئی, اور کس نے یہ باتیں سکھائیں اس کو, اس کے متعلق یہ کچھ نہیں جان سکتے. بعض سائنسدانوں نے تو یہ انکار کر دیا ہے یہ بات قبول کرنے سے کہ تم جانوروں کی اندرونے کو کے جانوروں کے دماغ میں جو کچھ گزر رہا ہے اس کو معلوم کرنے کی طاقت رکھتے ہو, کہتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ جو دماغ کے اندر گزر رہا ہے اس دماغ میں داخل ہونے کی تمہیں استطاعت نہیں ہے, اور اس کی سوچ میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں ہے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شیر کس آنکھ سے دنیا کے جانوروں کو دیکھ رہا ہے, اور کیوں بعض چیزوں سے رک جاتا ہے جبکہ وحشی جانور سے توقع ہونی چاہیے کہ وہ نہ رکے, اور کیوں بعض چیزوں پر وہ حملہ آور ہوتا ہے, اس کی بھی وجوہات کیا کچھ ہیں. چنانچہ یہ تحقیق جاری و ساری ہے, اور جہاں تک میں اپنے شوق کے مطابق ان معلومات کو رسالوں میں اور کتابوں میں پڑھتا جاتا ہوں میں حیران ہوتا جاتا ہوں کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. خدا تعالیٰ نے جتنی توفیق بخشی ہے اتنا ہی احاطہ, اور جب توفیق بخشتا ہے اس کا احاطہ عطا کرتا ہے, مگر اپنے علم کا احاطہ دیتا ہے, یہ خود کچھ نہیں پیدا کر سکتا. اب یہ دوسرا پہلو ہے. بعض لوگ رسالوں میں یہ نئے نئے علوم کی دریافت کی باتیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ تو بندہ بھی خدا بن گیا ہے. لیکن یہ سارے علوم جن کی وہ دریافت کر رہے ہیں خدا نے پیدا کیے ہوئے ہیں, ان کی انسان کی پیدائش سے بہت سے پہلے پیدا, بہت پہلے سے پیدا شدہ ہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا علوم میں سفر ہے, اپنے علم کرسی کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ, تو یہ بات اور بھی زیادہ وضاحت اور گہرائی سے اس تحقیق پر نظر ڈالنے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جتنی تحقیق کرتے ہیں یہ اللہ کے علم میں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, اس نے جو زندگی عطا کی ہے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, اس زندگی کے قیام کے لیے خدا نے جو کاروبار چلائے ہیں ان کے متعلق تحقیق کرتے ہیں. خود تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے, کچھ پیدا کرنے سے کلیت ناجی. بس آپ جو دیکھتے ہیں کہ جیٹ دنیا میں پھر رہے ہیں, بڑی بڑی توپیں بھی ایجاد ہو رہی ہیں, بڑے بڑے مولک آلے ایجاد ہو رہے ہیں, یہ سارے کے سارے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے پوٹینشلی تیار رکھے ہوئے تھے, یعنی ان کا وہ مادہ, وہ میٹیریل جس سے یہ چیزیں بنتی ہیں وہ خدا نے بنائی ہوئی تھی, کچھ بھی خود نہیں بنا سکتے. اور اس کی سمجھ ان کو کس نے دی؟ جس دماغ سے انہوں نے سمجھا ہے وہ دماغ خود انہوں نے بنایا نہیں. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالواسطہ جتنی بھی یہ جستجو کریں وہ سارے اللہ کے علم کے اندر ہے, اور اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کسی ایک حصے کے احاطے کی خود توفیق نہ بخشے. اتنا سا یعنی ایک طرف سے اس کو جیسے کمان ہوتی ہے, علم کو ایک طرف سے گھیرتے ہیں اور سارا علم کمان سے دوسری طرف کھلا پڑا ہوا ہے, اور جیسے کمان سے تیر چلایا جاتا ہے اس طرح اس علم کی کمان سے یہ اس جانب تیر چلاتے ہیں جس تک خود پہنچے نہیں ابھی, اور وہ تیر کبھی نشانے پر لگتا ہے کبھی نشانے پر نہیں لگتا, اکثر نہیں لگتا, لیکن جب نشانے پر لگتا ہے تو کمان کے اس رخ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں, وہاں پہنچ کر معلوم کرتے ہیں کہ اوہو ابھی تو بہت زیادہ آگے سفر باقی ہے, سارا وہ جنگل باقی ہے جس کا سفر ابھی طے نہیں ہوا. یہ آیت الکرسی کا ایک مضمون ہے جو میں آج آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اور بعض دانشوروں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ مضمون اپنی ذات میں ناپیدا کنار ہے. میں خود اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مضمون کی تلاش میں علم کے سمندر کے کنارے ایک چھوٹے بچے کی طرح چند سیپیاں چن رہا ہوں, اس سے زیادہ کوئی بھی حیثیت نہیں. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن کو میں ملائم سمجھ رہا ہوں وہ ملائم ہیں بھی کہ نہیں, اس کا بھی میں احاطہ نہیں کر سکتا. بس اللہ کی کائنات کا سفر جستجو کی میں زندگی اس کی جستجو میں گزاریں تو اس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور خدا تعالیٰ کی صفات آپ کے دل پر ایک نور کی طرح جلوہ گر ہوں گی. خدا کرے کہ یہ نور ہم پر بھی چمکے اور ہماری وساطت سے سب دنیا پر چمکے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.